अबीर सिंह राठौर अविनाश से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे के करीब गया, उसने देखा कि वहां एंजल है। इसलिए अबीर जाकर एक तरफ चुपचाप बैठ गया और एंजल के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। अब आगे, वहीं दूसरी ओर, अरमान वहां से वापस आ गया था और जैसे ही वो शारदा महल की तरफ जाने लगा, उसने देखा कि ध्रुव और आहान रास्ते में सामने से आ रहे थे। दोनों ही तुरंत अरमान के गले लग गए थे। तब अरमान ने उनकी ओर देखा और अगले ही पल बोला, तुम दोनों यहां इस तरह से बाहर क्या कर रहे हो? तुम दोनों को जाकर घर पर सबका ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी हम इस गांव में ज्यादा बॉडीगार्ड लेकर नहीं आए हैं, केवल कुछ ही गार्ड्स लेकर आए हैं। फ्लैशबैक, क्योंकि उस दिन जिस दिन नानी माँ पर हमला हुआ था, अगर उस दिन अरमान सभी गार्ड्स को घर पर ही छोड़ दिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, नानी माँ बिल्कुल ठीक होती। कहीं ना कहीं अरमान को इस बात का गुस्सा था कि अगर वो ज्यादा गार्ड्स लेकर आया होता, लेकिन उस दिन दादाजी ने सभी लेडीज की सेफ्टी के लिए गार्ड्स को अरमान के साथ ही भेज दिया था और फिक्र जताते हुए बोले थे कि घर पर वो अकेले रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वैसे भी उन बूढ़े बूढ़ी को कौन परेशान करेगा। लेकिन ठीक उसी वक्त दुर्जन सिंह ने मौका देखकर सबकी नज़रों से बचते बचते नानी माँ के घर में एंट्री ले ली थी और नानी माँ पर धारदार चाकू से वार कर दिया था। आहान बोला, लेकिन भैया आप कहाँ चले गए थे? पता है आपको, आज तो भाभी और बाकी सब आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। आस्था इस सिचुएशन में उसे क्यों ढूंढ रही है? इससे तो उसकी हालत खराब हो सकती है। तब अरमान ने ध्रुव की ओर देखा और ऑर्डर देते हुए बोला, ध्रुव आहान को घर जाने के लिए बोलो, तुम मेरे साथ चलो। ध्रुव हैरान था। वहीं आहान सोचने लगा कि अचानक भाई को क्या हो गया है, वो अगर किसी को लेकर जाना चाहता है तो मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकता है, ध्रुव को क्यों लेकर जा रहे हैं? लेकिन आहान को तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया गया था और बोल दिया गया था कि बाकी सबको इन्फॉर्म कर दे, अरमान भाई बिल्कुल ठीक हैं और अब कोई भी परेशान ना हो। अब जल्दी ही अरमान ध्रुव को लेकर एक अनजान जगह की ओर जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री में एक गोदाम में जो जंगलों के बीचों बीच था, वहां पर उस वक्त वंशिका पूरी तरह से चीख रही थी, लेकिन वो लड़के उसके सामने खड़े होकर बड़ी बुरी तरह से उस पर हंस रहे थे और बेशर्मी से बोल रहे थे, आज बस एक बार हमारे ठाकुर साहब यानी कि दुर्जन सिंह ठाकुर एक बार इस लड़की के साथ शुरुआत कर दें, उसके बाद तो हमारे मज़े ही मज़े। भले ही हर बार हमने काफ़ी सारे लड़कियों के साथ मज़े लिए हों, लेकिन हम केवल एक बार के बाद उसे दूसरी बार नहीं छूते थे। लेकिन अब इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद तो दिल कर रहा है कि जब तक हमारा दिल पूरी तरह से नहीं भरा जाएगा तब तक हम इसे छूते रहेंगे। हाँ हाँ, ऐसा बोलते हुए जोरों से हंसकर एक दूसरे को हाईफाई दे रहे थे। उन लड़कों की घटिया बातें सुनकर वंशिका की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो गई थीं। वो सोच रही थी बस एक बार वो लोग उसके हाथ खोल दें, फिर वो उन्हें बताएंगे कि वंशिका कौन है। जल्द ही दुर्जन वहां आ गया और वंशिका को देखकर अपने होठों पर हाथ फेरने लगा। वो बड़ा ही घटिया लग रहा था। वंशिका को उसकी मौजूदगी से घृणा आ रही थी। तब दुर्जन आगे बढ़ा और डेविल स्माइल करते हुए बोला, एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं यहां से चला जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा, सब कुछ खोल दूंगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? ऐसे बोलकर अचानक दुर्जन सिंह के बिना वंशिका कुछ भी सोचे समझे उसने जो फ्रॉक पहना था उस पर कैंची चलानी शुरू कर दी। अब तो वंशिका की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद आज उसकी इज्जत हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अगर उसकी इज्जत के साथ कुछ ऐसा भी खिलवाड़ हुआ तो वो अपनी जान एक मिनट में दे देगी। हालांकि उसे अपनी जान की कोई खास परवाह नहीं थी, उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ अरमान की जान लेना था। लेकिन अब उसने हार मान ली थी क्योंकि दुर्जन सिंह ने ऑलमोस्ट पूरे कपड़े कैंची से काट काट कर अलग करना शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर अब ध्रुव हैरान था कि अरमान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वो उसे सवाल भी करना चाहता था लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान से सवाल कर सके। जल्द ही ध्रुव ने देखा कि अरमान ध्रुव को जंगलों में लेकर जा रहा है। तब ध्रुव समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बिना अरमान से पूछे फटाफट से ग्रुप में से छोड़ दिया था और ग्रुप में से जैसे ही सबको मिला सबके सब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। और तो और ध्रुव ने उन्हें अपनी लोकेशन शेयर कर दी तो और फटाफट से वो लोग जो लोकेशन ध्रुव ने भेजी थी उस ओर चल दिए थे। और जाने से पहले आहान ने आस्था से बता दिया था कि अरमान भाई बिल्कुल ठीक है, वो घर पर सिर्फ आराम करे, वो सब अभी आ रहे हैं, तब तक आस्था सबके लिए खाना बनवा कर रखे। ऐसा बोलकर आहान मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया था। वहीं दूसरी ओर कुछ ही पलों में अरमान दुर्जन सिंह के ठिकाने के ठीक सामने खड़ा हुआ था। वहीं अब ध्रुव भी हैरान हो गया था कि आखिरकार अरमान भाई इस तरह से गांव के जंगल में उसे क्यों लेकर आए हैं। ध्रुव और अरमान ने देखा कि वहीं से अंदर से दुर्जन सिंह के आदमियों की आवाजें आ रही थी क्योंकि वंशिका को उन्होंने गोदाम के बने कमरे में रखा हुआ था। अब अरमान ने अपने माथे पर दो तीन बार रब किया, लेकिन फिलहाल अरमान ने ध्रुव की ओर देखा और बोला, दरवाजा तोड़ दो। तब जल्दी ही ध्रुव ने 2-3 जोरदार लाते खींचकर दरवाजे पर मारनी शुरू कर दी थी और कुछ देर में दरवाजा टूट चुका था, क्योंकि ध्रुव की स्टील जैसी बॉडी ही काफी थी उस जगह के दरवाजे को तोड़ने के लिए। और फिर अरमान तो था ही। अब जैसे ही दरवाजा टूटा और सामने देखा, अब तो ध्रुव हैरान हो गया। वहीं दुर्चन सिंह के कहने पर जो लोग बाहर निगरानी कर रहे थे वो गुंडे तुरंत बोले, शहरी लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें लोगों को इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तो तुम लोगों की लाश ही यहाँ से जाएगी। ये बोलकर जल्दी ही वे अरमान और ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी ध्रुव के कानों में वंशिका की आवाज सुनाई दी, कोई है, छोड़ो मुझे, जाने दो। अब ध्रुव ये सुनकर पूरी तरह से चौंक गया था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था जिस लड़की से उसे मोहब्बत हो गई है उसकी आवाज उसे इस तरह से यहाँ सुनने को मिलेगी। और अरमान का इस तरह से यहाँ आना उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। और ध्रुव ने अपने सामने खड़े हुए लड़के की गर्दन पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी थी और फटाफट से उस जगह जाने लगा था जहाँ से वंशिका की आवाज आ रही थी। तब तक वो गुंडे जल्दी ही अब अरमान से फाइट करने लगे थे, लेकिन अरमान बड़े ही इजी तरीके से उन लोगों को हैंडल कर रहा था। उन लोगों में इतना दम नहीं था कि वे अरमान से फाइट कर सके। अरमान बड़े ही इजी तरीके से उन लोगों को हैंडल कर रहा था। वहीं ध्रुव जैसे ही उस कमरे के अंदर गया तो उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। वहां दुर्जन सिंह अपनी धोती उतार रहा था और उसने अपना कुर्ता ऑलरेडी उतार रखा था।
वहीं वंशिका के कपड़ों को ऑलरेडी कैंची चलाकर वो उसके जिस्म से अलग कर चुका था। वंशिका इनरवियर में वहां पर थी, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही दुर्जन सिंह की नजर दरवाजे पर खड़े ध्रुव पर गई तो वो पूरी तरह से आग उगलते हुए बोला था, कौन हो तुम? तुम तो वो शहरी हो ना जो शारदा महल में रहने के लिए आए हो? तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी रात खराब करने का कोई हक नहीं है। शहरी बाबू, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। वहीं ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा बिल्कुल जम चुका था। इस वक्त उसकी नज़रें वंशिका और साथ ही साथ दुर्जन सिंह पर जा रही थीं। वहीं ध्रुव को नज़रअंदाज करते हुए दुर्जन सिंह ने अपनी धोती भी उतार दी थी और केवल अंडरवियर में वो वंशिका की ओर बढ़ने लगा था। अब तो ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। बिना देरी किए ध्रुव ने फटाफट से चारपाई पर एक चादर खींचकर वंशिका के ऊपर डाली और दुर्जन सिंह की गर्दन पकड़कर उसे लगातार दीवार पर देकर मारने लगा था। कितनी देर तक लगातार वो उस पर वार करता रहा। दुर्जन सिंह को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था। हालांकि वो भी ध्रुव से लड़ना चाहता था, उसे मारना चाहता था, लेकिन ध्रुव ने तो उसे सही से सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और वो उसे बुरी तरह से मारने लगा था, जब तक कि दुर्जन सिंह बेहोश नहीं हो गया। और जैसे ही वंशिका ने ये देखा कि दुर्जन सिंह बेहोश हो गया है लेकिन ध्रुव ने उसे मारना बंद नहीं किया, अब तो वंशिका को बहुत ही ज्यादा ध्रुव से डर सा लगने लगा था। क्योंकि इस बीच ध्रुव की शर्ट पूरी तरह से फट चुकी थी और इस वक्त वो केवल ब्लैक पैंट में मौजूद था और उसका शरीर बेहद हॉट लेकिन खतरनाक दिखाई दे रहा था। ध्रुव का लोहे के जैसा शरीर देखकर वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थीं, लेकिन अब ये देखने के बाद कि ध्रुव बिल्कुल भी दुर्जन सिंह के बेहोश होने के बाद भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वंशिका की रूह कांप गई और वो अपनी रुआंसी आवाज में ध्रुव की ओर देखकर बोली थी, ध्रुव छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा, ध्रुव मेरी मदद करो प्लीज। अब जैसे ही वंशिका ने इस तरह की आवाज निकाली ध्रुव का ध्यान वंशिका की ओर गया था। दुर्जन सिंह तो कप का खून से लथपथ होकर बेहोश हो चुका था। तब ध्रुव ने जल्दी ही वंशिका की ओर देखा और उसके बाद आगे बढ़कर उसने फटाफट से वंशिका के हाथ पैरों को खोल दिया था। अपने हाथ पैरों को खुलने के बाद वंशिका ने गहरी सांस ली थी। उस वक्त उसे खुद को संभालना काफी ज्यादा भारी हो गया था। उस वक्त वाकई उसे किसी के सहारे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब वंशिका पूरी तरह से बेबसी का शिकार हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे। उसने फटाफट से ध्रुव को ही गले से लगा लिया था और पूरी तरह से रोने लगी थी। ध्रुव ने चादर को अच्छी तरह से उसके बदन पर लपेट दिया था और उसे अपनी गोद में उठा लिया था, क्योंकि वंशिका इतना सारा ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डर से बेहोश हो गई थी। अब ध्रुव ने उसे अच्छी तरह से कवर करके उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे वहां से लेकर बाहर जाने लगा था। और जैसे ही वो बाहर गया उसने देखा कि ऑलरेडी वहां सुमित, आकाश और आहान पहुंच चुके थे, जो कि बड़े ही आसान तरीके से सभी दुर्जन सिंह के गुंडों की धमाकेदार धुलाई कर रहे थे। आहान तो अपनी पूरी फॉर्म में था, वो दुर्जन सिंह के गुंडों को बिल्कुल किसी एक शानदार फाइटर की तरह मार रहा था। ध्रुव, सुमित, आकाश, अरमान ने भी किसी भी गुंडे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वहां पर अकेला आहान ही उन गुंडों पर भारी पड़ रहा था। लगातार आहान ने कितने सारे मुक्कों से मार मार कर उन गुंडों को बेहोश कर दिया था। अगर आप कहानी के किसी भाग को विस्तृत करना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं तो मुझे बताएं। तब अरमान ने एक नज़र वंशिका और ध्रुव की ओर देखा और फटाफट से वो लोग गाड़ी में बैठकर शारदा महल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं आस्था पूरी तरह से हैरान थी कि आखिरकार आहान ने उसे वापस घर क्यों भेजा था और अभी तक अरमान क्यों नहीं आया है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही अरमान और बाकी सब लोग वहां आ गए और उन्होंने वहां पर वंशिका को ध्रुव की गोद में देखा तो सब पूरी तरह से चौंक गए थे। वहीं रश्मि, रौनक, राधिका और आस्था जल्दी से ध्रुव के पास गए थे और सवाल पूछने लगे, ध्रुव, वंशिका को क्या हुआ? वंशिका, उठो, प्लीज उठो वंशिका। तब ध्रुव ने रश्मि की ओर देखकर सीरियस वॉइस में बोला,
रश्मि दी, इसको इलाज की जरूरत है। शॉक की वजह से ये बेहोश हो गई है। प्लीज हैंडल हर। ऐसा बोलकर जल्दी ही एक कमरे में वंशिका को लिटा दिया और बाहर आ गया था। रश्मि को चेकअप करने के लिए अंदर भेज दिया गया था। रश्मि ने सभी को अंदर आने से मना कर दिया था। अच्छे से वंशिका को चेक करने के बाद उसने एक इंजेक्शन लगा दिया था और सबको बाहर आकर बता दिया था कि वो शॉक की वजह से बेहोश हुई है और कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। उसे वैसे कोई नॉर्मली या फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसे कोई मेंटली हार्म हुआ हो तो उसका होश में आने पर ही पता चलेगा। तब एक एक करके जो कुछ भी हुआ था, आहान ने सारी बातें आस्था और बाकी सबको बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन सब ने आते ही कितने सारे सवालों की झड़ी लगा दी थी। इसीलिए अरमान से परमिशन पाकर आहान ने सबको बता दिया था कि किस तरह से वंशिका दुर्जन सिंह के हत्थे चढ़ गई थी और दुर्जन सिंह ने ये सारी साजिश रची थी। वहीं आस्था का दिल अब दुर्जन सिंह का नाम आने पर नफरत से भर उठता है कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है, क्यों उसे उसकी जिंदगी सुकून से नहीं जीने देना चाहता है।